Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, khawatin hazrat. Isla humne likha hai ke suna hai ke kuch sahibane duty wali Allah اپنے ملک کی کی پوسٹ پر موجود اعلیٰ شخصیات کے اندر کسی خاص امر کی انجام دہی کے لیے ہدایات انجیکٹ کر دیتے ہیں جن کو وہ اعلیٰ شخصیات لاشعوری طور پر فالو کرتے ہوئے وہ کارنامہ سر انجام دیتی ہیں اور اس کا سارا کریڈٹ خود انجوائے کرتی ہیں. کبھی یہ نہیں جان پاتی کہ اصل میں تو ان سے یہ کام کروایا گیا تھا. عذرہ کرم اس پہ روشنی ڈالیے کہ دراصل یہ قصہ کیا ہے. اصل میں جس چیز کے بارے میں معلومات کم ہوں اس کے بارے میں اسی قسم کی کہانیاں جنم لیتی رہتی ہیں. سائنس ایک چیز کو تسلیم کرتی ہے, وہ ہے ٹیلی پیتھی, کہ ذہنی طور پر انسان ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتا ہے بغیر بولے. اور اس سلسلے میں انسان جتنا اسپرچولی پیور ہوتا ہے اور جتنا اسپرچولی وہ بلند ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے آسان ہوتا ہے ٹیلی پیتھی کے ذریعے کمیونیکیٹ کر لینا. ترقی یافتہ ممالک میں اسے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں, جیسے ہپنیٹزم ہے اس کو علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اسے ٹیلی پیتھی کو بھی یوز کرتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ کہیں اتفاقاً ایسا ہو گیا ہوگا کہ دو چار موقعوں پر ایسی چیز سامنے آئی ہوگی تو لوگ یہ سمجھے کہ آن پرپز وہ دوسرے انسان کے دماغ میں انجیکٹ کی جا رہی ہیں باتیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ یہ تجربہ زندگی میں ہوا ہوگا کہ آپ کے دل میں ایک بات آئی تو دوسرے شخص نے اس کو خود بخود ویسے ہی کر لیا جیسے آپ کے دل میں آیا تھا. سبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو اسی طرح چونکہ جو صاحب علم اولیاء اللہ کہلاتے ہیں وہ اسپرچولی خاصے ڈیولپڈ ہوتے ہیں, ان کی اگر کمیونیکیشن وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے سے ان نوئنگلی ہو گئی ہے تو لوگوں نے اس کو یہ رنگ دے دیا ہوگا کہ انجیکٹ کرتے ہیں. جو اولیاء اکرام ہیں وہ یہ حرکتیں نہیں کرتے بالکل, ان چیزوں سے بڑی دور رہتے ہیں. تو یہ سب قصے کہانیاں ہیں اور یہاں انڈین سب کانٹیننٹ ہی میں یہ سب ہوتا رہا ہے. ان کا اگلا سوال میرے بارے میں ہے. ایک سوال تو میری سروس کے بارے میں تھا, اس کا کیا جواب دینا. दूसरा ये था कि आप गवर्नमेंट के लिए काम करते रहे, रिजाइन करने की क्या हो जाती? बहुत सिंपल, जो लोग जिनकी तालीम एक खास ढब पर उन्होंने हासिल की होती है और उनकी ट्रेनिंग प्राइवेट सेक्टर में होती है, उनका मजाज गवर्नमेंट की नौकरी का बनता नहीं है। गवर्नमेंट की नौकरी में जबर बहुत है, पाबंदियां बहुत हैं, तो एक तरह से वो जहनी गुलामी है। तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में ट्रेन हुए हैं और खास तौर पर मल्टीनेशनल्स में काम करने के आदि हो गए, या उनकी शुरू की जॉब मल्टीनेशनल्स में है, तो उनकी एक अपनी ट्रेनिंग हो जाती है, जो ज़हनी तौर पर आज़ाद होते हैं वो लोग और अपनी राय का खुलकर इजहार करते हैं। गवर्नमेंट में ये चीज़ें पसंदीदा नहीं हैं, तो वहाँ पर घुटन का एक बड़ा शदीद एहसास होने लगता है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के लोग गवर्नमेंट में ज़्यादा देर टिक नहीं पाते, रिज़ाइन कराते हैं। ये सवाल ये है कि सुना है आपने अपने पास आने वाले कुछ साहबान को असूले दस्ते गैब के लिए पढ़ाई अता की है, क्या ये भी रूहानियत का कोई मरहला है? इसका कोई खास क्राइटेरिया है या कुलियतन शेख पर डिपेंड करता है कि वो जिसको चाहे दस्ते गैब अता कर दे? शेख दस्ते गैब अता नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ रब है जो जिसे चाहे अता कर दे। शेख तो ये कर सकता है कि आपसे ये कह दे कि साहब आप ये पढ़ लीजिए, इससे आपको दस्ते गैब हासिल हो जाएगा, लेकिन देना न देना रब की सवाबदीद है, ये रब ताला का प्रेरोगेटिव है। इस पर हम ये नहीं कह पाएंगे कि यकीनी तौर पे हासिल हो जाएगा, इसलिए कि जब कोई चीज तकदीर में नहीं है किसी के, तो शेख लाख कोशिश कर ले वो उसे मिल नहीं सकती, इसलिए कि रब तो अपनी मर्जी का मालिक खुद है, ना उसको कोई तजवीज दे सकता है, ना उसको कोई मजबूर कर सकता है। मालिक है जिसे चाहे अता कर दे, भास्कर गुनाहगारों को बड़े मजे से अता कर देता है वो, लेकिन शेख ये जरूर कर देता है कि पढ़ने को दे देगा कि आप ये पढ़िए। अगर तकदीर में नहीं है तो लोग पढ़ ही नहीं पाते या गलतियां करते चले जाते हैं, सारी उम्र लगे रहती, नहीं हासिल होता। और जिनको दस्ते गायब हासिल हो जाए उन पर पाबंदियां बहुत आ जाती हैं। यहां मैंने दो चार बार मुख्तलिफ नशिस्तों में ये जिक्र किया था कि दस्ते गायब दो तरह का होता है, एक तो यह है कि जो बुनियादी जरूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट मिलती है, और उसमें पाबंदी ये होती है कि वो उसमें बचाया नहीं जाएगा, कुछ भी खर्च कर दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि वो फरामा होती है, उसमें दौलत की अवेलेबिलिटी है, तो उसमें भी ये है कि जरा सी किसी ने कंजूसी की और गया उसके हाथ से सब कुछ, तो उसकी पाबंदियां बड़ी हैं, लेकिन शेख देगा उसी को जिसके बारे में उसको ये अंदाजा हो जाए कि ये बहुत ही बुरे हालात में है और बावजूद कोशिश के इसका कुछ बन नहीं पा रहा, तो उसको पढ़ने को दे देगा, बाकी उसकी अपनी, जिसको उसने पढ़ने को दिया है उसकी अपनी कोशिश है कि वो कहां तक कोशिश कर सकता है। तो शेख का तो काम इतना ही है कि सिर्फ गाइड कर दे, आपको रास्ता दिखा दे, मेहनत आपकी अपनी है। ये फिर मेरे ही मुतालिक है तो इसको क्या पढ़ना है, तो जवाब इसका दे देता हूँ कि ये कोई ज्यादा लंबा अरसा जारी नहीं रहा था सिलसिला, वो डिसकंटिन्यू हो गया था। ये कोई सवाल मेरी अपनी जात के बारे में ही है। तो दूसरा जो सवाल है कि लेट 90s वाला, ये जरूरत से ज्यादा रकम मिलती रही है मुझे, ये सारी सवाल मेरी जात के बारे में लिख दिए, मैं इनको अवॉइड ही करता हूं। एक सवाल ये है कि आपकी अपने मुर्शिद साहब से पहली बार मुलाकात किस सन में हुई थी? गालिबन 1978 के शुरू में हुई है। इससे अगला सवाल इनका है कि क्या आपके शायख ने आपको अपनी जिंदगी में ही दुआ की इजाजत दे दी थी और आपने उनकी जिंदगी में दुआ के लिए बैठना शुरू किया था? ये इजाजत दे दी थी। और इनका अगला इसी सवाल का हिस्सा है कि उनकी जिंदगी में दुआ करना आपको खिलाफ अदब लगा? यकीनी तौर पे, लेकिन अदब और हुक्म का जब मकाम आ जाए तो हुक्म अवलीन हैसियत रखता है। इनका अगला सवाल है कि आपने एक बार कहा था कि आपका पहला आजमाइशी पीरियड 6 साल का था और इसके बाद 2.5 साल के रिफ्रेशर कोर्स का पीरियड। सवाल ये है कि क्या ये आजमाइशी दौर हर इंसान की रूह की लताफत और कसावत के हिसाब से वेरी करता है? जरूरी नहीं है, तो चलता रहता है। बाज़ औलिया कराम अपने पास आने वालों को खाने की कोई चीज देते हैं, क्या वो इस अताकर्दा शय को खाने से कोई खास रूहानी फवायद होते हैं या किसी मसले के हल के साथ उसका ताल्लुक होता है? क्योंकि वो कभी कभार हिदायत फरमाते हैं कि जिसके लिए दुआ की गई है उसको ये चीज खिला दें। ये असल में बुनियादी तौर पर तो ये सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास आने वाले, हाजिर होने वाले लोगों को कुछ न कुछ अता फरमा देते थे। वो आमतौर पर औलिया किराम इसी सुन्नत पर अमल करते हैं कि जो मेरे पास आया है वो खाली हाथ ना जाए, उसको कुछ ना कुछ दे दिया जाए, कि ये सुन्नत है, सुन्नत समझ के करते हैं उसको। लेकिन रब ताला मेहरबानी फरमाता है, बाज़ का तो उसके फवायद मिलते हैं, लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन असेंशियली वो असल में ये सुन्नत पर अमल कर रहे होते हैं कि मेरे पास आने वाला खाली हाथ ना जाए, कि सुन्नत है। ان کا اگلا سوال بھی میرا خیال ہے اس کو کیا سوال ہے کہ اگر مرشد صاحب اپنے کسی مرید سے فرمائیں کہ اپنے آپ کو تولنا سیکھیں یا اپنے آپ کو تولیں تو اس سے کیا مراد ہے اور مرید اپنے آپ کو کیسے تولے؟ یہ الفاظ کا کھیل ہے سارا. اس سے مراد یہ ہے کہ خود احتسابی کرتے رہنا چاہیے انسان کو کہ اپنے اوپر نظر ضرور ڈالتا رہے کہ میں کیا ہوں, جو میں کر رہا ہوں وہ درست ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو خود احتسابی کا عمل ہے یہ عمل بہت پے کرتا ہے انسان کو کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے تو زیادہ بھٹکنے نہیں پاتا. لیکن اگر اپنی ذات پر نظر نہ رکھے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدمی کب راہ سے ہٹ گیا, کب بھٹک گیا. تو وہ تولنے کی اس سے مراد خود احتسابی ہے کہ اپنی ذات پر آدمی کو نظر ڈالتے رہنا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کہیں غلط تو نہیں ہے. مرشد جو سخت ہیں جس کو ہم ہارڈ ٹاسک ماسٹر کہتے ہیں, وہ چونکہ اپنے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہوا ہوتا ہے اور کرتے رہتے ہیں اس لیے وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ خود احتسابی میں جائیے, اپنا محاسبہ خود کرتے رہیے. ان کا ایک سوال ہے کہ ایک طویل عرصے تک کسی صاحب مزار سے روحانی وابستگی اور کھینچ محسوس ہوتی رہے اور پھر اچانک اس شدت میں کمی آ جائے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا مرید سے ان صاحب مزار کے حوالے سے کوئی غلطی سرزد ہوئی؟ ایسا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ علم کا سفر, حصول علم کا سفر تو جاری رہتا ہے, وہ مسلسل جاری رہتا ہے. ایک جگہ سے اگر انسان کو بہت کشش محسوس ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کشش میں کمی آ جائے یا وہاں جانا بالکل ہی موقوف ہو جائے, اس میں ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں اس کا حصول علم کا سلسلہ پورا ہو گیا, اب کسی دوسری جگہ سے اس کو علم حاصل ہوگا تو پھر وہ ہٹایا جانے لگتا ہے وہاں سے. نے سوال کیا کہ عموماً مرید صاحب مزار کی خدمت میں اپنے مرشد صاحب کا سلام عرض کرے تو اسے ان صاحب مزار کی زیادہ توجہ اور شفقت نصیب ہوتی ہے, لیکن کیا کبھی اس کے برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ صاحب مزار کی خدمت میں مرشد صاحب کا سلام پیش کیا تو اس کے بعد ان کی طرف سے وہ کھینچ محسوس ہونا بند ہو گئی؟ جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں بڑے وزادار لوگ ہوتے ہیں, ان میں وزاداری بہت ہے. تو جب آپ کسی کو جا کے اپنے مرشد صاحب کا سلام کہتے ہیں وہ صاحب علم اس اپنی اس تعلق سے جو آپ کے مرشد صاحب کے ساتھ اس کا ہے اس کو ویلیو کرتے ہیں اور وہ اپنے پاس آنے والے جنہوں نے وہ سلام پیش کیا یا حوالہ دیا ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں کہ وزاداری کا تقاضا یہی ہے. لیکن بعض اوقات ہو یہ جاتا ہے کہ اس چونکہ صاحب علم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ان کے پاس آنا مناسب نہیں ہے, آپ کو کسی دوسری جگہ جانا چاہیے, تو وہ پھر وارمتھ آپ کو نہیں ملے گی یا وہ پھر کھل کر کہہ دیں گے کہ دیکھیے میرے پاس آپ تشریف لائیے کیونکہ یہاں سے آپ کو نہیں کچھ ملے گا, آپ علم میں حصہ پائیں گے فلاں جگہ جا کے. تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. کیا کوئی بھی سینئر ولی اللہ کسی بھی جونیئر ولی اللہ کی غلطی پر اسے سزا دے سکتا ہے یا اس کا علم سلب کر سکتا ہے, خواہ اس کا تعلق مختلف سلاسل سے کیوں نہ ہو, جیسے کہ بحری قزاقوں اور پیسنجر لائنر والے واقعے میں ہوا؟ اس میں سلسلے کا کوئی تعلق نہیں ہے, سینیورٹی بہرحال سینیورٹی ہے, تو جونیئر کو صرف علم کے ریفرنس سے سکھانے کے لیے سزا دے دے گا, ممکن ہے اس میں. یہ سوال آج سارے میری ہی بارے میں ہے, لگتا ہے کہ یہ میری شامت آج آئی ہوئی ہے. کہا کہ آپ نے 22 اپریل 2019 کو اسلام آباد والے لیکچر میں کہا تھا کہ June 2019 میں آپ کو دعا کرتے ہوئے 35 سال ہو جائیں گے, گویا June 1984 میں جب آپ کی عمر 40 برس کی تھی اور قبلہ بڑے شاہ صاحب حیات تھے تو تب آپ دعا کے لیے بیٹھنا شروع ہو گئے تھے, تو اس وقت آپ دعا کے لیے کہاں تشریف رکھتے تھے؟ یہ صحیح ہے, 1984 ہی میں مجھے اجازت ہوئی تھی. دعا کا سلسلہ کوئی دنوں شروع شروع میں ایسا نہیں تھا جہاں کوئی شخص آ گیا اس نے دعا کے لیے کہا تو دعا کر دی, لیکن جب لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوئی تو پھر اسی جگہ جہاں آج ہم بیٹھے ہیں یہاں پر دعا کا سلسلہ شروع ہوا تھا ریگولر, اور اس وقت یا سب حیات تھے. ان کا یہ سوال ہے کہ بیت المعمور کا ان کا یہ اس سے پہلے سوال ہے کہ انسان کی عمر کے 40ویں برس کی کیا اہمیت ہے؟ اصل میں 40 साल में इंसान पूरी तरह मैच्योर होता है. इसलिए 40 को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है कि उस उम्र में इंसान जहनी तौर पर पूरी तरह डेवलप हो गया होता है और पूरी तरह मैच्योर हो गया होता है. इनका सवाल लगा कि क्या ये दुरुस्त है कि जब आप 40 बरस के थे तो साहिब कैफ, साहिब वलायत, साहिब अम्र और साहिब दुआ थे, तो क्या हर साहिब दुआ साहिब कैफ भी होता है? ये जरूरी नहीं कि हर साहिब दुआ साहिब कश्फ भी हो. ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से. इनका सवाल बैतुल मामूर का तवाफ फरिश्ते तो करते ही हैं, क्या किसी इंसान को भी ये एजाज हासिल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अलावा मेरे ख्याल में किसी और को नहीं है. अगला सवाल भी इसी से मुतालिक है कि क्या बुलंद पाया औलिया अल्लाह जिनकी परवाज सिदरत मुंतहा तक होती है, रूहानी तौर पर उन्हें बैतुल मामूर का तवाफ करने की इजाजत है? मैंने अभी इसी से जिम्मे अर्ज किया था कि मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है. साहब ने लिखा है कि आई कैन सी दैट शाह साहब इज अगेंस्ट वजीफास एज दे कैन अफेक्ट अ पर्सन नेगेटिव वे. ही सजेस्ट पीपल टू रीड कुरान. आई वांट टू नो डज रिसाइटिंग द कुरान हेल्प इन अचीविंग वंस ड्रीम एंड विशेस. आई डिडंट गेट दिस आंसर फ्रॉम हिज लेक्चर्स. मैं वजीफा वजाइफ या जिक्र अजकार के अगेंस्ट नहीं हूं. मैं उससे एग्री नहीं करता जिस नियत से हम जिक्र अजकार और वजाइफ करते हैं, तस्बीहात करते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरा कहना यह है कि इंसान को जिक्र अज़कार तस्बीहात वज़ाइफ जरूर करने चाहिए, इसलिए कि ये सब चीजें अल्लाह को पुकारने का जरिया है. लेकिन जहां मेरा इख्तलाफ है वो ये है कि इसके पीछे नियत क्या है. तो मैं तो ये अर्ज करता हूं कि रब को जरूर पुकारिए जिस तरीके से भी पुकारना चाहते हैं आप, वज़ाइफ से, तस्बीहात से, जिक्र अज़कार से जरूर पुकारिए, लेकिन नियत ये न रखिए कि इससे मेरी दुनियावी काम हो जाए. नियत ये रखिए कि मैं अपने रब को पुकार रहा हूं कि वो पुकारे जाने का लायक है, फिर ये बहुत आला चीज है, जरूर करने चाहिए. कुरान पाक की तलकीन मैं इसलिए ज्यादा करता हूं कि जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं तो हम रब से हम कलाम होते हैं. तो अब देखने की चीज ये है कि वन साइडेड गुफ्तगु अच्छी या रब से हम कलावा होना अच्छा। तो कुरान पाक की इसलिए मैं तलकीन करता हूं। आपने जिस चीज से मैं मना करता हूं वो वही आपने इसमें फरमाया है कि आई वॉन्ट टू नो डज रिसाइटिंग द कुरान हेल्प इन अचीविंग वन्स ड्रीम्स एंड विशेस। यही एक चीज है। मैं ये कहता हूं कि मेरा रब बड़ा मेहरबान है, तो मैं उसको सिर्फ पुकारे जाऊं, लुक आफ्टर वो मुझे खुद करेगा, उसके लिए मुझे फिक्र की जरूरत नहीं है। इसलिए कि मैं अल्लाह को रब कहता ही इस निस्बत से हूं कि वो पालने वाला है। तो जो है ही पालने वाला तो वो मेरी जरूरियात को क्यों नहीं देखेगा। तो मैं बिला वजह में उस सादत से महरूम हो जाऊं ये नियत करके कि मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूं, मुझे शर्ट के बटन बंद करने हैं तो एक वजीफा पढ़ूंगा तो बटन बंद करे होंगे, मुझे जाके गाड़ी में बैठना है तो पहले मैं एक वजीफा करूंगा कि मैं आसानी से गाड़ी तक पहुंच जाऊं। मैं ये क्यों ना करूं कि मैं सिर्फ अपने रब को पुकारूं, अपने रब को याद करूं और सिर्फ इस नियत से कि वो पुकारे जाने के लायक है, वो इबादत किए जाने के लायक है, बाकी वो खुद पालेगा इसलिए कि वो रब है। तो मेरी छोटी छोटी जरूरियात का ख्याल रखता है वो कि वो मेरा रब है। जरूरियात तो मेरी रब ने पूरी करनी है, तो फिर मैं बिला वजह में अपनी इबादत को उस तरफ ले जाऊं कि मैं गर्ज से करता हूं इबादत। मेरा कहना सिर्फ ये है। एक साहब ने पूछा है कि बाज़ औक़ात जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि इंसान फैसला कर नहीं पाता कि मेरे लिए फैसला करना ठीक है या गलत, जरा रहनुमाई कर दें। इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है कि रब ताला ने हमें जो फहम अक्ल और इल्म अता फरमाया है हम उससे काम लें और हुस्ने तदबीर के साथ काम को करें, नाकामी नहीं होगी। और अगर एक चीज के बारे में फैसला करना मुश्किल हो रहा हो तो उसके लिए इस्तखारा मौजूद है, इस्तखारा कर लीजिए। इस्तखारा करने की हिम्मत नहीं है तो ताला के हजूर दुआ कर कीजिए बड़े सिद्दक दिल से कि या अल्लाह मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा, तू मेरी रहनुमाई कर दे कि मैं सही फैसले पे पहुंचू, तो इंशाअल्लाह ताला फैसला सही होगा। इंडिया से किसी ने सवाल पूछा है I need to know the fadail of last two ayat of Surah Tawbah and want to know that if I can read it as wazifa. If yes, please suggest the time and quantity. मेरे ख्याल में आप बजाय सूरह तौबा की आखिरी दो आयात का वजीफा करने के अगर पांचों नमाज के बाद सूरह बकरा के तीसरे रकू की आखिरी तीन आयात जरूर पढ़ लें, अफजल तो ये होगा कि पहले तीन रकू हर नमाज के बाद पढ़ लें जिसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके लिए दुश्वार है तो तीसरे रकू की आखिरी तीन आयात ये हर नमाज के बाद अगर पढ़ लें, लेकिन ये आपको पढ़नी पड़ेंगी 101 बार। और ये तो पांचों नमाज की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मुमकिन ना हो तो फजर की नमाज के बाद जरूर पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला बेहतर अजर देने वाला है। ये आपका सवाल का जवाब देने में थोड़ा सा वक्त इसीलिए लगा कि मैं आपका दूसरा सवाल जो बहुत ज़ाती है वो पढ़ रहा था, तो उस सवाल को ही सामने रख के मैंने आपसे ये अर्ज किया कि आप सूरह बकरा के तीसरे रुकू की आखिरी तीन आयात ये कोशिश कीजिए हर नमाज, नहीं तो खास तौर पे फजर की नमाज के बाद जरूर पढ़ लीजिए और अल्लाह के हजूर दुआ कीजिए कि परवरदिगार आपका वो काम कर दे जो आपने सवाल में लिखा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बड़ी जल्दी आपका वो काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसको पढ़ दीजिएगा, उनका जाती बात लिखी है उसमें। पढ़िए नहीं, इसको पढ़ दें। राह फकर पर चलने वाला एक इंसान कुछ सफर तय करने कर लेने के बाद आगे नहीं बढ़ पाता या पीछे आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए? इस पर अक्सर हमारे यहां बात होती है। हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। हम ये समझते हैं कि कुर्बे इलाही या अल्लाह की दोस्ती हासिल करना या अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए इबादत काफी है, और इबादत में भी तस्बीहात। ये दुरुस्त नहीं है। यकीनन इबादत अहम है और इबादत जरूर की जानी चाहिए कि वह हकूकुल्लाह की अदायगी का जरिया है। लेकिन इसके साथ अगर अल्लाह ताला के दूसरे अहकामात को हम उस पर अमल नहीं करते, बिल्कुल ऐसा है कि एक मुलाजिम है, वो आपके कामों में से एक आध कोई काम तो बड़ी दिल जमेई से कर देता है, लेकिन आपके दूसरी तमाम बातों पर अमल नहीं करता आपके तमाम दूसरी, तो आप क्या उससे खुश होंगे? क्या वो मुलाजिम आपको अजीज होगा? हकुकुल्ला तो दीन का हमारे एक छोटा हिस्सा है। हकुकुल इबाद से मुतालिक जो अहकामात हैं वो बहुत वसी हैं। हम उनको पसे पुछ डाल देते हैं, फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा फकर की राह पर। वहां तो इंसान को जिस हद तक मुमकिन हो सके पूरी कोशिश करके अल्लाह के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हुक्म पर अमल करना चाहिए। हम इंसान हैं, मजबूरी हो जाती है, कहीं भूल हो जाती है, नादानिस्ता तौर पर गलती हो जाती है, अल्लाह माफ फरमाता है, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते हम अहकाम को। तो जब हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह नहीं ढालते अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, तो फिर फकर के राह का सफर हमारा स्लो डाउन हो जाता है, या रुक जाता है, या खोटा हो जाता है, और हम परेशान होते हैं कि हमारे यहां ये चीज आम है कि हम हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो मारे मारे फिरते हैं कि कहीं से किसी तरह कोई दुआ कर दे कि हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। या तकलीफ में आ गए तो हम हर एक से अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं अपने ही जैसे इंसान के सामने। अगर इस पर हम गौर करें तो अंदाजा ये होता है कि क्या ये हम रब का शिकवा नहीं बयान कर रहे हैं। छोटी सी एक बात है ये, फकीर ये काम नहीं करता कभी, वो बड़े सिदक दिल से शुक्र अदा करता है। कितनी मुसीबत में होगा, कितनी मुश्किल में होगा, आप उससे बात कीजिए, बड़े जज्बे के साथ कहेगा कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी मेरे ऊपर, बड़े जज्बे से कहेगा। वो ऐसा नहीं है कि आप शाह साहब से पूछें कि कैसे मजाज है साहब, तो जैसे शुक्र अदा करेंगे शाह साहब के, नहीं अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन कहीं इन बिटवीन द लाइंस एक बारीक सी आवाज आ रही होगी, काहे का दिया क्या है। तो वो शुक्र अदा करना नहीं, फकीर तो बड़े जज्बे से शुक्र अदा करता है, जनरली कह रहा होता है कि अल्लाह का बड़ा करम है मेरे ऊपर। तो एक छोटी सी ये बात, मामूली सी है, राह फकर में मुस्कुराना शुक्रगुजारी है और रोना बेसब्री की निशानी है। तो हम इसी की कितनी खिलाफवर्जी कर रहे होते हैं सुबह से शाम तक, तो फकर की राह में आगे कहां जाएंगे हम। फकर में ख्वाहिशात की गुलामी की बड़ी सख्त ममानियत है। तो हम सुबह से शाम तक ख्वाहिशात के पीछे भागते रहते हैं। जनाब हजरत अली करमल्लाह वजहू ने फरमाया था कि मैंने अपनी जरूरियात इतनी कम कर ली कि मैं अमीर हो गया। वो तो इमाम है फकर के, तो वहां ये फरमान है कि मैंने अपनी जरूरियात इतनी कम कर ली कि मैं अमीर हो गया। हम क्या करते हैं, तो फकर की राह में आगे कैसे चलेंगे। इसलिए रुकावट आ जाती है हमारे रास्ते में कि हम ख्वाहिशात की गुलामी करते हैं। उसकी नफी होनी चाहिए। अल्लाह के जो अहकामात हैं उन पर टू द लेटर एंड स्पिरिट अमल होना चाहिए, इंसानी मुमकिन हद तक, क्योंकि बहसियत इंसान बहुत सी कोताहियां होती हैं हमसे, उसको अल्लाह माफ फरमाने वाला है। बाकी इंशाल्लाह इन्ना अगली इतवार तक के लिए बशर्ते जिंदगी इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।